शांति सेना, सत्याग्रह युद्ध, ये सब है ना। आत्मा क्या है? नहीं, वो धनुरात्मा ब्रह्म का लक्षण मुख्यते उपनिषद में भी, धनुष बाण
प्रणव धनु
प्रणव धनुष करो यात्मा ब्रह्म का लक्षण मुख्यते अप्रमत्तेन वेद भव्य। अब ये सब युद्ध की भाषा है, करले श्रृंगार चतुर अलदी, ये सब चाहे अध्यात्म हो कहीं भी हो, युद्ध की और ये ईश्वर की भाषा मनुष्य के हृदय को छूती है, इसलिए इस भाषा को परिष्कृत कर लेना बहुत आवश्यक है। अहिंसा के शांति के सिपाही चले चले, अब सिपाही क्यों चले चले? चांद के किसान क्यों नहीं चले चले, जवानी क्यों चले? तो इन शब्दों को परिष्कृत कर लेना होगा। ये योगदान है अलग अलग तरह के क्रांतिकारियों, और क्रांति का प्रथम पैगंबर दुनिया में मैं मार्क्स को मानता हूं। इसलिए जो रोहित नहीं था, प्रीत नहीं था, प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट के कुछ शब्द ऐसे होते ही कि जिन शब्दों को बाद में अपने प्रयोग से चरितार्थ करना पड़ता है जीवन में, उनके अर्थ का विकास हो जाता है। इसलिए मनमोहन बाबू से मैं निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को थोड़ी देर चलने देनी चाहिए, और ये तो विचार ही संगीत ही थी ना, तो इसमें शब्दों का परिष्कार की प्रक्रिया भी इसमें होनी चाहिए, जहां तक हो सकती है हमको करनी चाहिए। ये हम नहीं करेंगे तो व्यावर्तक बन जाएंगे, संप्रदाय बन जाएंगे, उपमंडित वृत्ति हमने आ जाएगी, अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि न मार्क का प्रतिषेध हो और न गांधी का आग्रह हो, ये दोनों हमारे लिए इस वक्त हानिकारक होने वाले हैं।
ये तो ऊपर में आपत्ति हो, इसीलिए भी वो
हाँ, लेकिन ये शब्द का ही आग्रह हुआ है चाहे आम कहो चाहे मैंगो कहो,
नहीं शब्द को मेरा आशय शब्द को छोड़ने का नहीं है, लेकिन शब्द को हम किस कॉन्टेक्स्ट में किस कॉन्टेक्स्ट
में ये मैंने सुझाया है, ये कॉन्टेक्स्ट
नहीं, मैं मेरा आशय ये शब्द हो जाए अपना, तो फिर कोई आगे चल करके
संघर्ष के आपने कुछ मर्यादाएं बताई जाती है शुरू में, जो संघर्ष की मर्यादाएं बताई कि उसमें कोर्स नहीं होना चाहिए, तो वर्ग संघर्ष शब्द में शायद वो मर्यादा अंतर्भूत नहीं है, उसको जब हम स्वीकार करते हैं तो शब्द के साथ में उन वर्ग संघर्ष के साथ में ये जो मर्यादा अंतर्भूत नहीं है, इसे हम मर्यादा को भी छोड़ देते हैं। आपने जो शायद मर्यादाएं बताई वो सत्याग्रह की मर्यादा है, संघर्ष की शायद वो मर्यादाएं नहीं है, तो वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग सत्याग्रह
शब्द। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, युद्ध मात्र की यह मर्यादा है जो मैंने कही। युद्ध के साथ जिस दिन धर्म शब्द जुड़ गया, उस दिन युद्ध भी सांस्कृतिक विकास का साधन बन गया। हिंसा सांस्कृतिक विकास का साधन कभी नहीं। युद्ध यानी जिसमें वीरता हो, वीरता अधिक हो, क्रूरता कम हो। वीरता अधिक हो, संहार कम हो, उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। युद्ध की भी यह मर्यादा थी धर्म युद्ध की। अब उसमें से शस्त्र भी निकल गया, तो क्या युद्ध की मर्यादा को हम छोड़ देंगे? वीरता की मर्यादा को हम छोड़ देंगे? युद्ध भी मर्यादित है, अगर उसको सांस्कृतिक विकास का साधन हो तो। अब एक कदम हम आगे जाते हैं, मनुष्य का कदम हर प्रयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारा एक कदम आगे बढ़ता है, हम उसको अब शस्त्र उसमें से निकाल देते हैं, तो किसी दूसरी शक्ति जो शस्त्र का पर्याय हो वो आनी चाहिए, तो हम अब यहाँ तक पहुंचे हैं कि शस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। जो बाबूराव ने कहा शस्त्र का नहीं होगा, समाधि का भी नहीं होगा, तो अब हमारी मुख्य शक्ति क्या होगी? शस्त्र का भय छोड़ देना, हिंसा का भय छोड़ देना, शस्त्र का भय छोड़ देना, ये भूमिका का प्रथम चरण है। इस मर्यादा के बिना तो कोई वीरता ही नहीं आएगी, कोई क्रांतिकारिता ही नहीं आएगी। फिर तो बच्चे और स्त्रियों और बूढ़ों का भी को भी सिपाही ही मानना पड़ेगा। रण क्षेत्र पर इनको धर्म युद्ध में भी सिपाही नहीं माना गया। तो युद्ध की हमेशा मर्यादा होती है, अगर युद्ध मानवीय प्रगति का साधक बने तो, साधन बने तो उसकी एक मर्यादा होगी। इस तरह से हमारी भी मर्यादा है और यह मर्यादा कुछ अधिक है। सामाजिक बहिष्कार और भी भयंकर हिंसा है। हाँ कहिए कौन सकते
अभी जो व्यवहार में हम लोगों को देखने आ रही है, एक तो स्टेट का जो कोर्शन है उसके बाद अदालत, तो हम लोग जो भी काम प्रयोग कर रहे हैं उसमें स्टेट का कोर्शन का भी इस्तेमाल कर, जो उनके विरोध में जो कानून बने हैं उनका पूरा इस्तेमाल हो सके इसकी कोशिश कर रहे हैं। आम जनता का जहाँ भी शोषण हो रहा है सामाजिक आर्थिक, या किस तरह का भी वो उनका रेजिस्टेंस हर संकल्प करे ऐसी परिस्थिति भी क्रिएट कर रहे हैं। ये एक है, उसका गलत भी कर रहे हैं लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति बनती है कि जैसे कि कानून बने लोग जो लॉज बने, अब वो उनको समझने ही नहीं आ रहा है ये कि ये लॉज सही कर गवर्नमेंट के लॉज या फिर जो सामाजिक कानून उन्होंने पहले से बना रखे थे वही सही है और उन्हीं लिमिटेशन के अंदर वो अपने को बदलना चाहते हैं। जैसे सिविल कानून आएगा या वकील का आएगा या ये वाला, अब उनकी समझ में ही नहीं आता कि अढ़ाई से अनाज से ज्यादा देना न्याय संगत कैसे हो। तो यहाँ पर जैसे कानून से विवश करते हैं हम, गवर्नमेंट को बताते हैं, पूछ करते हैं पुलिस की न्यायालय यही हो, तो ये तो विवश किया जाता है व्यवहार में हमको लग रहा है। तो हम मारते नहीं हैं उनको, हिंसा नहीं करते हैं, वो मारते नहीं हैं, तो कोशिश करते हैं कि कन्फ्रंटेशन नहीं हो बचते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी क्रिएट करते हैं कि वो विवश हो। तो ये क्या है ये आपको,
ये हमारी शक्ति की मर्यादा है। सरकार की शक्ति का की सहायता हम जितनी अधिक लेंगे उतना वो विवश अधिक होगा, उसको जितनी कम करते जाएंगे उत्तर उत्तर उतनी लोक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। लोक शक्ति के विकास का एक क्रम है कि क्रांतिकारी की राज्य निर्भरता कम होनी चाहिए। अब व्यवहार की बात कह रहे हैं तो व्यवहार उसका मतलब मैं इतना ही समझता हूँ, अपनी शक्ति के मर्यादा, यही व्यवहार है। व्यवहार कोई सिद्धांत तो है नहीं, व्यवहार को हम प्रगत करना चाहते हैं, व्यवहार को आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस दिशा में, सिद्धांत की दिशा में। सिद्धांत क्या है, मनुष्यों को एक दूसरे के नजदीक लाना, ब्रिंगिंग मेन क्लोजर टूगेदर, यह सिद्धांत है, यह ऑब्जेक्टिव है। इस दिशा में जाने के लिए कानून और शस्त्र या दोनों का प्रयोग जितना क्षीण होगा उतना मनुष्यता का, मानवीय मूल्यों का विकास होगा। तो व्यवहार को भी हमें अपने बढ़ाना है, इसमें व्यवहार की प्रगति है। व्यवहार को कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं माना जा सकता, प्रैग्मेटिज्म इज द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन इन द वर्ल्ड। नहीं, वर्ग संघर्ष व्यवहार दूसरी भूमिका पर है, मनुष्य के एक नजदीक आने में रुकावट करता है, वर्ग मनुष्यों के नजदीक आने में रुकावट करता है।
नहीं, जैसे आपने कहा कि सरकार और कानून का, सरकार के शस्त्र और कानून से जो दबाव डलाने की हम कोशिश करते हैं, इसका ये कम होना चाहिए। तो जो लोक का दबाव माने उससे यदि लोक द्वारा कोई दबाव, उसकी इच्छा तो सरकार के कानून और शस्त्र की भी उसकी नहीं रहती है, इसी तरह से लोक द्वारा जो दबाव पैदा हो उसकी भी इच्छा तो उसकी नहीं रहती है, लेकिन उससे ये ज्यादा अच्छा
है, काफी अच्छा है।
तो जब सरकार और कानून के दबाव की आवश्यकता पड़े किसी चीज के लिए, तो उसके विकल्प में लोक का दबाव क्रिएट करना, वो उसको अच्छा नहीं लगे तो भी करना पड़े तो ये परिस्थिति जल्द होगा।
हाँ, लेकिन तो करना पड़ेगा, दबाव शराफत का होना चाहिए लोगों को। दबाव डालने वाला ही अगर शरीर नहीं होगा और शरीर होगा तो क्रांति का परिणाम शराफत के बदले शरारत
होगा। मैं समझता हूँ, मैं एक बात इसका अर्थ ये हुआ कि जो समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में मनुष्य है उसकी शराफत और शरारत बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि आपकी क्रांति ही शराफत की है, नहीं तो क्रांति के बाद फ्रांस में जैसे विलोटिन आया वो आएगा,
लेकिन अगर हम कुछ भी करें उसको आप शराफत नहीं माने तो क्या हो? हम कुछ भी करें उसको आप शराफत नहीं माने?
आप जिसे माने वही शराफत, शराफत का लक्षण ही रखना। दूसरे के जिस व्यवहार को आप शराफत माने को तैयार हो वो शराफत।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि विचार के स्तर पर कोई चीज तय करने के लिए मनुष्य जो उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है उसका विचार भी आवश्यक है।
यहाँ क्रांति की प्रक्रिया में मनुष्य का, क्रांतिकारी का विकास होना चाहिए, उसके जीवन में क्रांतिकारी मूल्य बढ़ने चाहिए। जैसे सिपाही युद्ध की प्रक्रिया में सिपाही की वीरता बननी चाहिए, वैसे क्रांति की प्रक्रिया में क्रांतिकारी का चारित्र विकसित होना चाहिए।
इसमें दादा जो चर्चा अभी क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए इसका चला है, तो मैं अपने व्यक्ति रखने का करना चाहता हूँ। एक ये है कि आज के सामान्य सामाजिक परिस्थिति में कोई छोटा सा काम किसी से सरकार से करवा लेना हो, काम करना हो, मजदूर बढ़ाना हो, कुछ करना हो, तो कुछ जो प्रैक्टिकल कार्य का व्यवहारिक तरीके मान्य है जिसमें जिसको हम कहेंगे अपने परिवर्तन स्वरूप चिंता भी हो जाती है तो दबाव, जिसको हम सत्याग्रह के नाते कल्पना नहीं जैसे दबाव कर आ जाता है तो दौड़ को क्या जाता है, तो जैसे तैसे करके उसको निकाल देते हैं। ये इसको शांतिपूर्ण तरीका भी माना जाता है, यानी आज समाज में जिस हद तक थोड़ा किसी को दौड़ा चक्कर लगा दिए तो कोई बड़ी हिंसा हो गई ऐसा नहीं माना जाता, ऐसा करके काम निकाल लिया तो चल जाता। सवाल यह है कि आगे बढ़ करके हमको क्रांति के लिए जो चाहिए शक्ति पैदा करनी है, ऐसी परिस्थिति जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये इसमें जो मिला जुला अपना आपका ढंग है उसमें से एक तो आपको किसी एक दिशा में जाना पड़ेगा, या आप एक जगह पर पहुंचेंगे या अधिक हिंसा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी दंगे की जरूरत होगी, बंदूक की आवश्यकता होगी और जो सामने वाले सरकार या उसकी शक्ति है किसी को उधर जाना पड़ेगा, या फिर इधर आपको विकास करना पड़ेगा कि कैसे आप उसको जितना चाहते हैं और जिस पैसा दूसरे प्रकार की शक्ति जो उसमें अस्तित्व है उसको कैसे विकसित करिए सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम कौन से शराफत है कौन सा नहीं है यानी उसको स्टैटिक कोई हम तय कर लेते हैं तो उससे कुछ उसमें निकलने वाला नहीं है। आज की जो सामान्य माने हुए हमारा आदतें हैं उससे आपको जिस दिशा में जाना चाहे तो उस दिशा में बढ़ने की कुछ हमको प्रयोग और कुछ करना पड़ेगा, उसका रास्ता नया निकालना चाहिए। हम
मुझे इतना ही कहना है कि हम आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, इसका अधिक गहराई से विचार होने की आवश्यकता है। अभी स्थूल हिंसा की बात कही तो कुछ स्थूल अहिंसा भी ऐसी है जो हिंसा से अधिक भयानक है, यानी गाली से चपत कम हिंसा चपत में है, गाली में तलवार से भी अधिक हिंसा है। दो युद्धवीर एक दूसरे से तलवार से लड़ाई करेंगे लेकिन उसके साथ गाली को नहीं जोड़ेंगे, तो कभी कभी शाब्दिक हिंसा प्रत्यक्ष हिंसा से भी अधिक भयानक यानी अधिक हानिकारक होती है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अब आपने तो यहाँ पर इसीलिए लोगों को बुलाया है कि विचार अधिक करें, वो तो इसकी कोई स्टैटिक, वो कहते कहा ना अभी की इसकी कोई स्टैटिक व्याख्या नहीं होती, डायनेमिक होती है। हिंसा का जो विचार है वो विचार नहीं है, जीवन में अहिंसा जीवन का उपादान है। नॉन वायलेंस इज द स्टफ ऑफ विच लाइफ इज मेड, इट्स नाइदर ए प्रिंसिपल नॉर ए थियरी नॉर ए कॉन्सेप्ट। एक प्रायोराइज इफ यू एक्सेप्ट लाइफ यू हैव टू एक्सेप्ट नॉन लाइफ विच मीन्स लव। इसलिए इसमें अब आप अगर दाई भी चाहिए कि नहीं इसका विवाद करने लगेंगे तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, आप चरण आगे कीजिए, मैं चरण भर आपके लिए रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ वी बिगिन विथ ह्यूमन बींग इन द कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन बींग
पार्ट ऑफ मैन
यस ऑन द पार्ट ऑफ मैन फर्स्ट नॉन वायलेंस टूअर्ड मेन, देन टूअर्ड अनदर एनिमल, देन टूअर्ड नेचर, दिस इज इंक्रीजिंगली
लॉ ऑफ नेचर इज लीगल
अनदर स्टेट. दिस इज नॉट द लॉ ऑफ नेचर एंड दिस इज नॉट व्हाट आई से. दिस हैज बीन रिपीटेडली एड नॉसियम enunciated by no less a man than Prince Tropatsky, who cannot be charged with having believed in any faith or religion. He says mutuality is the law of life. Even in the ocean, if you read his Mutual Aid or the latest book published now, his Ethics, he says ethics is in the nature of man. And this is what I call theism, astikta, belief in the inherent goodness of man.
What about man? What about nature?
It is the fact of life.
Ocean में कैसा होता
है? Ocean में भी जो बड़ी मछली जो खाती है वो उसका अन्न है, हिंसा नहीं. That is very different. Very different. शेर बकरी को खाता है, हिंसा नहीं है.
फिर हम मान लेते
नॉन वायलेंस इज द बेसिस ऑफ बिहेवियर. नॉन वायलेंस इज बोथ नेचर एंड कल्चर.
आदमी पकड़े खाता
है तो उनका उसका अन्न नहीं है, उसका अन्न नहीं. ही कैन डू विदाउट इट.
I think Dharani,
this is what should be added,
is that the poor man is not the food of the rich man.
We are quite right. And nor is the rich man the poor man's food.
बकरी अर्थी का कूद नहीं है तो पूर्व में नहीं है. ये तो
आज की परिस्थितियों में संघर्ष का क्या परिष्कार होगा?
मैंने आपको कहा कि जैसे आप भूमि की समस्या से अगर शुरू करते हैं हम, तो गैर मालिक और छोटे मालिकों को हम मिलाएंगे. जनरल चीज है. अब आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह से जो उसमें फर्क पड़ेगा उतना म्यूटैलिस्ट म्यूटैंडिस्ट क्या आप कहते हैं वो करिए, उस तरह से उसमें फर्क पड़ता चला जाएगा हमारे प्रयोग में. लेकिन जो गैर मालिक है और जो छोटा मालिक है, क्योंकि इसमें हमारा अनुभव यह है कि छोटी मालकियत बड़ी मालकियत का संरक्षण करती है. दूसरे क्षेत्रों में हम क्लस्टरी शिप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले का कैपिटलिज्म इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट इज नोन एज कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म एंड कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म. दीज वर इन्वेंटेड एज ए काउंटर ब्लास्ट टू कम्युनिज्म.
इसका मतलब ये हुआ कि छोटे मालिक और मजदूर जब तक एक नहीं होते तब तक संघर्ष नहीं कर सकते.
कौन करेगा फिर? आप. हमने किया था भूमिदान केवल दो खेत का मालिक भाग गया और हमारा कार्यकर्ता पिटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं. इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ ये रामचंद्र मेरा विरोध करता है, वो अभी समझा नहीं मेरी बात. जिसके पराक्रम से क्रांति होगी उसको अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिए, नहीं तो उसमें क्रांति की शक्ति कभी नहीं आएगी. प्रेरणा से मतलब यह है कि संपत्ति का केवल स्थान नहीं बदलेगा, संपत्ति और स्वामित्व समाज व्यापी बन जाएगा, इतनी प्रेरणा उसको उसमें जोड़नी होगी। इन द एब्सेंस ऑफ रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस नो रिवोल्यूशन इज पॉसिबल। मैं भी कुछ आधार
नहीं हूँ, असमानता के रहते हुए लड़ने के साथ इसकी हम शपथ मारने लायक भी नहीं, दूसरे के पास बाकायदा बंदूक का लाइसेंस है, ये जो स्थिति है उसको हम किसी तरह से दूर कर सकते हैं या सरकार से दूर करवानी पड़े, ये करवाना जरूरी है। क्योंकि ट्रिगर हैप्पी जो शब्द है ये बहुत ही आकर्षक शब्द है और बहुत छोटे कार्यों पर आदि बंदूक पा है, और उस वक्त हमारे जिनको बिल्कुल ही हथेली पर रख के चलते हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं, और उस वक्त आंदोलन नहीं होता, कोई बड़ी शक्ति लेकर हम नहीं पा पाते। अगर हमारे सामने हमको ये भय हो कि हम गए और वो पिस्तौल तान देगा तो क्या उसकी पिस्तौल को लेने के लिए हम सरकार से सत्यार्थ करें या उसे सत्यार्थ करें, क्योंकि उसके पास पिस्तौल नहीं रहना चाहिए जब हम इतनी ये है उसके बारे में।
अब इस व्यावहारिक प्रश्न को थोड़ा आगे चला, एक एक आप करके समझ लीजिए कि मैं सवालों के जवाब नहीं देता हूँ, सवाल को पहले अपना देता हूँ, सवाल मेरा ही हो जाता है, जिससे जवाब सोचे तो आप भी मेरे साथ सोचे। अब मैं उसके पास पिस्तौल है और मेरे पास सिर्फ जब तमाचा है या मुक्का है, सरकार अगर मेरी बात नहीं मानती है तो दोनों पिस्तौल एक हो जाते हैं। मैंने कानून की या सरकार की सहायता का निषेध नहीं किया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी शक्ति का विकास होना चाहिए, युद्ध में हो यानी सशस्त्र प्रतिकार में हो या निशस्त्र प्रतिकार में हो, वीरता वहां शुरू होती है जहां शस्त्र कुंठित हो जाता है, वहां से वीरता का आरंभ होता है, चाहे वो तानाजी की वीरता हो या अभिमन्यु की वीरता। शस्त्र शक्ति जहां छिछक जाती है वहीं से वीरता का आरंभ होता है सशस्त्र युद्ध में। इसलिए पहले निवेदन पहला मैंने ये किया कि अहिंसा को माने या न माने शस्त्र का भय छोड़ इसका शिक्षण देना होगा। अब इसके बाद जो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है जिसे डिसिप्लिन वायलेंस मैं कहता हूं, सरकार की जो हिंसा है ये सीमित हिंसा है क्योंकि संगठित है, तो उसकी सहायता हम ले सकते हैं। लेकिन हमने बार बार ये अभी समझा जो मैंने सीखा यहां और वो भी सीखा कि सरकार आज का जो संगठन समाज का है उसी का एक हिस्सा हो सकती है, एक साधन हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में न्यस्त स्वार्थ और सरकार एक हो जाती है, तो फिर क्या ये जो अल्पसंख्या में है इनके लिए कोई चारा ही नहीं है? क्या जेकोस्लाविया की शस्त्र शक्ति कुंठित हो जाए तो पदतंत्र बन जाए? तो मैंने इसलिए सुझाया कि दोनों एक ना हो तो अब कानून की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन हमको किस तरफ को बनना है कि कानून का आधार सैंक्शन शस्त्र शक्ति न हो लोक मत हो, यह हमारी क्रांति का ऑब्जेक्टिव है। दैट द सैंक्शन ऑफ लॉ शैल नॉट बी मिलिटरी फोर्स बट कंसेंट, कंसेंट ऑफ द पीपल। अब इस तरफ को कदम अगर बढ़ाना है तो क्रांतिकारी को इस दिशा में ले जाना होगा ना। इसलिए मैंने उसकी रामचंद्र की बात मानी कि व्यवहार को परिष्कृत करना होगा, आगे ले जाना होगा, और इसी तरह हम बढ़ेंगे। आज हमारी शक्ति इतनी ही है कि असंगठित गुंडे की हिंसा का मुकाबला संगठित सरकार की हिंसा से, तो ये भी मैं सभ्यता का अगला कदम मानता हूं। एक आदमी मुझे तमाचा मारता है, उसके जवाब में अगर मैं तमाचा मार देता हूँ, दिस इज इनवॉलंटरी रिफ्लेक्ट एक्शन, जिसे आप प्रतिक्रिया रिएक्शन कह सकते हैं। लेकिन उसको मैं तमाचा नहीं मारता, मैं अदालत में जाता हूं, ये प्रोग्रेस। सोशल एक्शन सब्स्टिट्यूटेड फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन इज एन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ये पनिशमेंट अलग चीज है और वेंजेंस अलग चीज है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कानून का की सहायता ली जा सकती है, वो प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉन वायलेंस है। लेकिन वो भी दोनों अगर एक हो जाते हैं आज की सामाजिक परिस्थिति में, तो मैं अकेला क्या रह जाता हूं? या तो मैं विवश होकर डरकर मरूं या इच्छा से मरूं। अब मैं इतना ही चाहता हूं कि मुझ पर अगर मरने की नौबत आए तो मैं थोड़ा निर्भय होकर मरूं, क्योंकि वहां केवल मरण नहीं है, मरण में दो विकल्प हैं, कि अपनी इच्छा से मरूं या फिर डरते हुए मरूं। स्वाभाविक मृत्यु में मैं डरकर मरना पसंद करता हूं, लेकिन प्रतिकार में डरकर मरना ज्यादा मनुष्य की प्रगति के लिए पोषक नहीं होगा। अब इस चर्चा का कहीं अंत नहीं आएगा।
अगर दो
अब इसमें यह है कि हमारी बहादुरी कितनी है। आज ऐसी स्थिति है, हिंदू मुसलमान से डरता है, मुसलमान हिंदू से डरता है, दोनों एक दूसरे से डरते हैं, इसलिए तीसरी शक्ति की आवश्यकता होती, सरकार की शक्ति। कानड़ी मराठी आदमी से डरता है, मराठी आदमी कानड़ी से डरता है, और दोनों मिलकर तमिलनाडु से डरते हैं। अब आप एक एक सवाल पूछेंगे, अगर ये एक चीज आती है, इस देश में पीपल नाम की कैटेगरी है ही, ये मैं कैटेगरिकल स्टेटमेंट कर रहा हूँ।
मेरे मन में एक सवाल है,
आप अहिंसा छोड़ दीजिए, सब दे गई है।
एक बड़े जन आंदोलन के चक्कर में जब हम पड़े तो हमने शांतिमय और शुद्ध रूप पालन की बात करी, क्या ये विकास के ही क्रम में है?
हाँ, विकास के क्रम में। बात तो करते हैं कम से कम अहिंसा की। हिपोक्रेसी इज द ट्रिब्यूट दैट वाइस प्ले टू अस।
जहाँ पर विचार प्रचार का या लोक शिक्षण का स्वातंत्र नहीं है, जैसे जो कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पर क्या इसका प्रयोग हो सकता
है? तो ये प्रयोग की बात है, हो सकता है, मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी, कर सकते हैं कि नहीं, वहाँ से वहाँ से लोग
हुआ है हम कहें,
अब कुछ उदाहरण लेकर के हम चौटाली जी की बात करते हैं, मैं समझता हूँ चौटाली उसको जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज हो जाते हैं, पूरे टोटल वर्ग दूसरे वर्ग से मुकाबला करते समय किस क्षेत्र का उपयोग करके उस वर्ग की प्रतिष्ठा को भी कायम रखेगा और अपनी भी अपना भी अपनी प्रतिष्ठा भी कायम रखेगा, फिर भी अपना पॉइंट जीतेगा। और जिस टोटल सिचुएशन में वह व्यक्ति खरीदने के बाद
कुछ प्रश्नों का विचार छोड़कर टोटल जो स्थिति का अभी संगीत का विषय उसकी चर्चा की
ठीक है, तो फिर इसको छोड़ देना हो तो छोड़ देता
हूँ।
ऐसा है, ये टोटैलिटी कलेक्टिव वगैरह ये जो शब्द है, दे आर सोशियोलॉजिकल फिक्शन, ये मिथ्स है। the reality is the relationship of between I and thou. तो totality का सगुण रूप चतुर्भुज रूप इंडिविजुअल है. Who is the central figure in democracy? The individual in relationship. He will be the maker of this revolution. ये मेरा कहना बस ठीक है.
अनुभव से भी और विचार से भी और वो स्थिति काफी आगे काम करने के बाद ही आती है. इसीलिए लोक समिति के गठन से शुरू करना चाहिए, गरीब और वर्ग के संगठन से नहीं, और उस क्रम में इंटरेस्ट को गांव में क्रिस्टलाइज करने देना चाहिए. अगर लोक समिति के गठन से और लोक समिति की सक्रियता से यह अनुभव बताता हो कि नहीं कुछ ऐसे हित हैं गांव में जिन हितों की अपेक्षा हो रही और उनके अलग संगठन की जरूरत है, तो उनका संगठन होना चाहिए. और अगर गांव की लोक समिति स्वयं अनीत को अन्याय को दूर करने के लिए उद्यत हो, तो फिर अलग संगठन बनाने की जरूरत नहीं है.
मैं तो सिर्फ उसके भूमिका में उसकी हमारे जो वैचारिक भूमिका उसका लगे जैसे संगठन